जैसा भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, पोशीदा हो, जाहिर हो, बातन हो, उसकी सजा है और उसकी नहुसत है, महुसत है, बदबख्ती है, अल्लाह की नाराजगी है, सबसे बड़ी दूर अल्लाह से दूरी है। उस अत्तर मुगान जहां तक भी इंसान की हद जा सकती है, गुनाहों से बचने की कोशिश करे, आखिरत में कामयाब इंसान वही होगा, फलाह पाने वाला, जिसका दुनिया के अंदर गुनाहों से छुटकारा हो चुका होगा। गुनाह जो हमने यहीं छोड़ने हैं जिंदगी में, मौत से पहले पहले, इसके बाद कोई ऐसा मामला नहीं है कि माँ गुनाह छोड़ सके, गुनाह यहीं छोड़ने, इसी जगह खत्म कर। बहुत से गुनाह ऐसे आम हैं आजकल, क्यों उनको गुनाह समझते नहीं, और वो बहुत बड़े गुनाह हैं, बहुत ही बड़े गुनाह हैं, जिनमें से एक गुनाह जो है इस कदर आम है शायद ही कोई इंसान बचा उससे, पीर फकीर सूफी साकिर शाकिर सारे इसमें रगड़े गए। वो गुनाह जो है गीबत है, बैकबाइटिंग, सारे गुना गंदे हैं, लेकिन ये बड़ा गलीस गुना है, इतना गंदा गुना है, इतना है कि इंसान का सांस ही नहीं था कि कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं, कितने बड़े अजाम में मुबतला होता है इंसान जिस पर से गुनाह कर रहा। आखिर गुनाह से हम कैसे छुटकारा हासिल करें, बेहम गुनाह से बचें, कैसे बचें, इसके बारे में सोचें। चंद पॉइंट्स आपको अर्ज करता हूँ, इंशाल्लाह उस पर अमल कर लिया जाए तो इस गुनाह से छुटकारा हासिल हो सकता है। सबसे पहली चीज है इस गुनाह से निजात हासिल करने के लिए गीबत से, या कोई भी गुनाह, सबसे पहली चीज यह है कि अपने अल्लाह की तरफ इंसान रुजू करे और अल्लाह से इस्तदा करे, दुआ करे, नफिल पढ़ कर दुआ करे, अल्लाह पाक ये गलीज गुनाह है, मैं इससे छुटकारा हासिल करना चाहता हूँ, नहायत कमज़ोर हूँ, माहौल ख़राब है, तो बजस तेरी रहमत और तेरी मावनत के, तेरी मदद के, मैं इस गुनाह को छोड़ना मुश्किल है मेरे लिए। सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि इसमें क्या है कि हमने इरादा किया है गुनाह छोड़ने का। वैसे इतनी इरादा ही ना हो तो काम तो कभी नहीं होगा, दुनिया काम नहीं। मेरा इरादा ही ना हो कि मैंने खाना खाना है तो मैं खाना पकाऊंगा, मेरा इरादा ही ना कि मैं चाय पीनी है तो चाय बनाऊंगा। जब इरादा आएगा चाय बनाऊं, चाय पीने में उड़ के पी चाय बनाऊं, बड़ी बेसिक चीज़ यह है कि हम अपना इरादा करें कि इस गलीज चीज़ से, इस गुनाह से अल्लाह ताला हमें छुटकारा हासिल करना है। फर्स्ट चीज़ क्या चीज़ है? इरादा, इंटेंशन, कि मैं इरादा कर रहा हूँ अल्लाह ताला। इरादे के बाद दूसरा स्टेप अल्लाह से मदद मांगनी है। पहले इरादा करेंगे, अब उसके हम स्टेप उठाते हैं क्या करें, फिर हम स्टेप उठाएंगे उस गुनाह को ख़त्म करने के लिए कि अल्लाह ताला दो रकात नफिल पढ़ लें, वैसे दुआ कर लें, इस्तग़फ़ार की तस्बीहात कर लें और अपने इरादे को पक्का कर लें और कहने लगे मौला मैं इस गुनाह को छोड़ना चाहता हूँ। इससे यह होगा अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह सुबहाना ताला की मदद आना शुरू हो जाएगी, अल्लाह अपनी मदद भेजना शुरू कर देते हैं उस इंसान पर। याद रखना जब अल्लाह ताला की मदद मांगते हैं ना, अब ऐसी बात नहीं कि जो बंदा अल्लाह से मदद मांगे अल्लाह मदद ना करे, तो हुआ ही नहीं कभी। उसके इरादे को देखता है, उसकी नीयत को देखता है अल्लाह, उसकी इखलास को देखता है, उसके अंदर से चीज़ देखता है कि कितने परसेंट ये चाह रहा है। जितने परसेंट हमारी अल्हम्दुलिल्लाह नीयत होगी उसी से कई गुना परसेंट अल्लाह ताला मदद फरमा देते हैं। याद कितनी मुश्किल। अच्छा जी, दो चीज़ें होंगी, अब तीसरी चीज़ इसमें क्या है गुनाह छोड़ने की, कि जो वईदें आई हैं गुनाह पर इससे गीबत है। अब गीबत के ऊपर जो वईदें आई हैं, जो सजाएं आई हैं, ज़ाहिर ऐसी तो कोई चीज़ नहीं कि जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना बताई हो, अल्लाह ने ना बताई गुनाहों के, अल्लाह ने बताई सजाएं बताई हैं। उन सजाओं के बारे में इंसान जब वो गुनाह के करीब हो तो उस सजाओं के बारे में सोचे कि अल्लाह ताला की सजाएं हैं, एक्सेसार करें उसको कि कितनी बड़ी बड़ी इसकी सजाएं हैं, मैं काम करने लगा हूं कैसे मैं बर्दाश्त करूँ इसको। हिब्बत इंसान करने लगता है तो सोचे इसकी सजा क्या है, जब मैं अभी लगा हूं शुरू होने वाला हूं उस बात पर, बहुत सजा है इसकी तो भाई, बहुत सजा है। अरे आप ये देख रहे हैं कि सूद इतनी बड़ा गुना है कि उसके बारे में है कि जो सूद खाता है वो 70 बार सगी माँ के साथ जना करता है। हदीस में आता है कि गीबत जो है उससे भी बड़ा गुना है। चंद सेकंड में इंसान कहां पहुंच जाता है जिससे वो गुना कर रहे है, इस हालत के अंदर इंसान होता है किसी की गीबत नहीं आप कर सकते, दुश्मन की भी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। वजह ही अल्लाह ने इसको इतना बड़ा इस सजा दी है इसकी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े बड़े गुनाहों को आज की रात अल्लाह ने दिखाया, उसमें से देखें कितनी बड़ी सजा मिलेगी। जिसको हम गीबत करते हैं तो हम कहाँ होंगे ये सोचें, आप गीबत करने वाला सोचें कि मैं अब कहाँ खड़ा हूँ या कहाँ खड़ी हूँ इस वक्त में, सोच लें क्या हाल होगा उस वक्त। उस वक्त हाल जी होगा दिखाया नबी पाक कौम है, अजीब अंदाज से उसको सजा मिल रही है, वो छातियों के बल उल्टे लेटे हैं, उल्टे टक लटके हुए हैं, किस तरह के अल्लाह को छातियों के बल, वो औरत और मर्द उल्टे छातियों के बल लटके हुए हैं दोज़ख के अंदर, कबाब बन रहे, चीख और पुकार है, बुरे हाल है दोज़ख के। तो भैया अजीब अजीब ऐसी ऐसी सजाएं कि आदमी सोच नहीं सकता। कुरान में अल्लाह ने बताया कि आदमी औरत मर्द जो गुनाह करता है उसका हाल ये होगा कि अल्लाह सुबहाना ताला उसको जहन्नुम में फेंक कर, जहन्नुम जाने ही बहुत बड़ी चीज़ है, जहन्नुम में फेंक कर अल्लाह सुबहान तआला उस पर एक गर्म पिहुरान है, इतना गर्म पानी उसके सर पे डालेंगे, और वो पानी जब सर के डलेगा तो उसका पेट फट जाएगा, अंदर से सारी आंचनी बाहर आ जाएंगी। ये अल्लाह बता रहे हैं इसके साथ, किसी गुनाह के साथ बता आंचनी बाहर आ जाएंगी, वो चीख तो भागेगा, वो फरिश्ते खड़े होंगे उसके धक्का देगा, फिर उस आग में फेंक देंगे, मुसलसल भी काम होता रहेगा। इन वहीदों को आदमी सोचे कि इतनी सख्त सजा में पहुंच चुका हूं, उल्टा लटका है आदमी जिस जो भी गिरफ्त कर रहे हैं, उल्टा लटका है वो उस मुकाम पर जहां अल्लाह ने बताया और उसको सजा मिलती है। खुद अल्लाह सुबहान तआला ने कुरान में इसकी सजा बताई है कि भैया ऐसी बड़ी सजा है कि जिससे इंसान गिबत करता है तो सगे मुर्दा भाई का गोश्त खा रहा है, सगे मुर्दा भाई का गोश्त वो खा रहा है। और प्रैक्टिकल अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में औरतों के साथ बताया तुम उल्टी करो ना देखो क्या होता है, उसने उल्टी की तो वो गोश्त के बाकायदा बोटी बाहर निकल आ गई कि तुमने गोश्त खाया है बाहर निकल गए। ये सजा इंसान जहन में रखे। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मुहब्बत की सजा पर, अल्लाह के नबी ने फिर कौम को देखा उसी कौम को कि वो मुर्दा मुर्दार बदबूदार, वो तो अल्लाह ही जानता है कि जहन्नुम के कैसे वो मुर्दार होंगे और कैसे बदबूदार होंगे। हदीस में आता है कि गैबत करने वाले की बू अल्लाह अंदर देखें क्या होता है, उसकी हालत क्या होती है कि उसकी बू इतनी होती है अगर जमीन पे उसकी बू आ जाए गीबत करने वाले की आसमानों से पूरी जमीन ही बेहोश हो गया। यहां अल्लाह ने पर्दा डाला हुआ है, हमने तमाम चीजों अंदर समेटा हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ, ये सब अंदर हैं हमारे जो हम चीजें करते हैं। इसलिए अभी तो अल्लाह ने कुरान में कहा है कि सबसे पहली बात यह कह दी जो इस कुरान पे यकीन नहीं करेगा उसे हो ही नहीं सकता, इन बातों में यकीन नहीं करा क्या बड़े आम कम मेरा दिल तो ये करता है हम ये कर लें फला कर लें, ऐसी ऐसी बातें का शुरू होते हैं, हम मर जाएं हम फला हो जाएं, मर के कहाँ जाएंगे, अभी तो वक्त है अल्लाह के फजल से हम कर सकते हैं अपने आप को से, आज भी हम सही हो जाएं तो सही कर सकते हैं। देखिए आप कितनी और ये माश आप देख रहे हैं हमारी जिंदगी में गीबत का हाल क्या है, किस तफसी है मुर्दा खा रहे अल्लाह, ये कौन सी कौम इतनी गंदी किस हाल के अंदर ये कौम, फरमाया ये वो भाई लोग जो गीबत करते थे गीबत करते थे। जब ये वही ने हमारे सामने होंगी चंद बातें बता रहा हूँ मुझे बताया हुआ क्या आदमी का हाल क्या होगा। अब हम इस काम पर आ जाते हैं एक बहुत बड़ा धोखा आ जाता है कि हम बहुत बड़ी इबादत कर रहे हैं, हम तो बहुत नफ्स खुशी कर रहे हैं और जनाब अल्लाह फला 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 हजारों जो अल्लाह ताला तौफीक देते हैं इंसान को करने के लिए, रमजान में दस दिन कुरान भी ख़त्म करते हैं तरावी भी पढ़ते हैं तहज्जुद में पढ़ रहे हैं जिक्र अज़कार भी कर रहे हैं तो हमें ये गुनाह छोटा नजर आता है, समझ नहीं आती। सुने हदीस सुनाता हूँ इस सिलसिले में, रोज़े क़यामत में तहरे सारे अमाल लेकर अल्लाह के पास पहुँचेंगे, हम भी पहुँचेंगे भी हमारे तो बड़े अमाल हैं, तो सारी जिंदगी नेक काम किए हैं हम माशाल्लाह खैरातें दी हैं फलां किए हैं फलां किए हैं, शौक शौक से पहुँचेंगे अपने माल देखेंगे तो वहाँ जाएंगे तो दरबार में हाजिर होंगे, अल्लाह के दरबार में तो कुछ भी नहीं पढ़ा है देखेगा और हज का तो नहीं आगे कितने मैं तो यार निकी किए मैं तो लिखी होते हैं इतने हज किए हैं इतनी उम्र की हैं, अक्सर पूछते ना आपने कितने हज किए हैं मगर डायरी पे लिखते रहते हैं, उसमें तो याद नहीं। तो वो कहाँ गए सारे? आखिर भी अर्ज करेगा, या अल्लाह मैं तो अपना अमाल देख रहा हूँ, मेरे अमाल कहाँ गए, मुझे कोई नजर नहीं आ रही चीज। सुनने वाली हदीस है, अल्लाह ताला कहेगा हाँ तुम्हें मुझे पता है, तेरे फरिश्ते जानते हैं, तूने बड़े अमल किए हैं, बहुत इंतहा तो दुनिया में मशहूर था, बड़ा मुत्तकी है, बड़ा इबादत गुजार है, बड़ा हाजी है, बड़ा हाजी है, तो मेरे वो अमाल कहाँ गए, तेरे अमाल तो गायब, तुमने तो गलती खुद ही किए, हमने तो नहीं किया, मैंने कैसे कर दिए, तुमने कैसे कर दी, तो गीबत करता था तो तेरे अमाल खत्म हो गए सारे, तेरी गीबत ने तेरे सारे अमालों को खत्म कर दिया, कुछ भी तेरे पास नहीं। फरिश्तों को हुक्म दिया जाएगा इसको पकड़ो और इसको जहन्नम में फेंक दो और उस गीबत की सजा दो उसको जो उसने की, तो बजाय वो नेकियों के और उसको सजा दी जाएगी, पता है कितनी बड़ा गुनाह है। सारे गुनाहों का हम देखें, गुनाह जो है आदमी इस्तग़फ़ार करता है, तौबा करता है, गुनाह माफ़ हो जाते हैं, ग़ीबत का तो माफ़ नहीं होता तौबा से, बताएं ग़ीबत करने के बाद फंस गया आदमी जाल के अंदर, कैसे माफ़ होगा, नहीं बताएं ग़ीबत का तो माफ़ होगा, उस आदमी के पास जाके हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे, यार मैंने तेरी ग़ीबत की है, ले दे के माफ़ कर दे, वो जो भी कह गए मैं तो नहीं करता, ये रिश्ता करूँ सारा अपनी जिंदगी में टटोल के देखें। अब हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हजरात और हाजरात यानी औरत और मर्द अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, तज़किया जो कर रहे हैं लोग अपनी शीट को अमल करते हैं, दिस ग्रेट जॉब अल्लाह जो उनसे ले रहे हैं, अल्लाह के ताला की इस ऑफर को एक्सेप्ट किया है माशाल्लाह, बहुत अच्छे लोग हैं सुभानअल्लाह। इसी तरह अल्लाह सुभाना ताला अख़वाम के ऊपर अपनी रहमत नाजिल करता है और लोग समझते हैं तो बेवकूफ़ी है, ठीक है ये इसके किस्से आप उठा कर देखें, नूर सलाम आए सब हंस रहे हैं क्या किश्ती बना रहे हैं, दिमाग क्या किश्ती पहाड़ पे क्या कर रहे। इसी तरह अल्लाह सुब्हान तआला अपनी रहमत के साथ वक्तन फ़वक्तन ऐसी चीज़ें पेश करते हैं ऐसी दुनिया के अंदर कि जिससे आदमी अपने आप को बचा सकते हैं और सही हो सकता है। आज की आसान बातें मुझे बताएं इन गुनाहों से बच, वो आसान नहीं तो मुझे बताएं कौन आदमी जो बगैर छोड़े बच सकता है, इसकी नीयत ही ना छोड़ने की, जैसे मैं आपको पहले मिसाल दे दी, इसकी नीयत ही नहीं चाय बनाने की, चाय बना कैसे सकता है, चाय का पिए कैसे, आप चाय नहीं पिए कहते मेरा इरादा नहीं था, और जिसका इरादा होगा अल्हम्दुलिल्लाह घर में चाय बना के पिए तो गुनाह छूटेगा कैसे, उसका उसका इरादा ही नहीं, उसके दिन में उसकी अहमियत इरादा नहीं, उसकी अहमियत ही नहीं, इरादा शो करता है अहमियत, तो उसके लिए क्या है कि ये वईद जो है सेकंड चीज थर्ड चीज मैं बता रहा हूं आपको, इन वईदों का हर वक्त इंसान गीबत हो जाए सारी पिक्चर आ जाए तमाम गुनाहों की, क्या हो कि आखिरत के अंदर एक चीज नहीं मिलेगी, मैं सारे अमाल जो जिंदगी हम कर रहे हैं आपको बता दूं, मुझे लफ्ज है हदीस की, किसी गलत फहमी में आदमी ना रहे गीबत करने वाला कि मैं इतने अमाल करता हूँ मेरे पास ये है मेरे पास वो ना, बिल्कुल सारों को साफ कर देती है गीबत। एक और हदीस सुनाता हूँ आपको, जिस अमाल की बात करती है ईमान की बात करें, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि जिस तरह ये दरख्त है इसमें सूखे पत्ते हैं, वही चढ़ावा आएगा और इसको हिलाएगा मारेगा डंडे अपने बकरियों के लिए और पत्तों को छींकने के लिए, ये सारी टहनियाँ खाली हो जाएंगी, बिल्कुल साफ हो जाएंगी, मिसाल दे रहे हैं अल्लाह के नबी अपने साहब फरमाया, जब इंसान गीबत करता है तो उसका ईमान बिल्कुल सीधा झड़ जाता है पत्तों के। इन पत्तों की तरह बिल्कुल ईमान उसका इंसान खत्म हो जाता है, झड़ जाता है। ये है भाइयों सोचने वाली बात है, नमा फरमाएगी देखें अपने अमाल भी काम नहीं आएंगे, हमारे हमारे ईमान ही हमारा गायब हो जाएगा, इतना बड़ा गुनाह है गीबत, मुझे बताए नापसंद है चीज, क्योंकि आम हो जाती है चीज तो आदमी कहता है ये सब कर रहे हैं मैं भी करूं क्या फर्क पड़ता है, मैंने खुद देखा जी फला फला आदमी सब कर रहे थे, बहुत बड़े आदमी थे वो भी कर रहे थे, पेटे मजे में वो भी काम कर रहे थे, उसका हौसला बढ़ता है, अल्लाह के नजदीक से ये चीज नहीं है। ابھی اللہ نے کہا کہ انسان کو تقوی سے پہچانا جائے گا انسان. تقوی ہے تو پھر دوسری چیزیں اللہ تعالیٰ ان کو تولے گا کہ یہ بھی تھا, یہ بھی تھا, اس نے یہ بھی کیا تھا, فلاں بھی کیا تھا, جو کچھ اس نے دنیا کے اندر دین کے خاطر چیزیں سی ہے ہی نہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کو کیا کہ نہیں, تو غائب بھی ہوگا. اس غلط فہمیوں کو دور کرا جو شیطان نے ہمارے ذہن ڈالی ہے. ہمارا سسٹم آف لائف وہ ہونا چاہیے جس طرح اللہ تعالیٰ ہم نمایاں کرنے کے لیے اس کے مطابق دین کو چلائیں, اپنی طرف سے ہم منع کریں گے. تو تیسری چیز کیا ہوئی؟ وعید. میں نے چند باتیں بتائی ہیں آپ کے بارے میں, اور بہت ہیں اس کی سزائیں جو ہیں. غیبت کی, غیبت کرنے والا اس حال کے اندر ہوتا ہے جو میں نے آپ کو بتایا, مرد عورت کچھ پاس نہیں ہوتا اسے, بالکل پھانک ہوتا ہے خالی. اور کرنے والا سننے والا دونوں برابر ہیں, حدیث بات ہے. اسی سن جو غیبتیں سنتا ہے میں کرتا تھوڑے ہیں سنا ہو گیا, کیونکہ وہ ایک نمبر ایک اس کی سزا ہی, کوئی ایسی کمپنی میں بیٹھتا ہے جہاں ایسی بکواس بازی ہوتی ہے, اس کو کہا کس نے تمہیں جا کے بیٹھ وہاں بیٹھ کے دھپا. تو صرف کرنے سے نہیں ہمیں پرہیز کرنا, بلکہ کیا ہے سننے سے بھی پرہیز کرنا ہے. اور سننے کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ کہیں پھنس گئے ہیں سب سے پہلے بات تو یہ کریں, اس کو روکنے کی کوشش کی یار چھوڑیں کوئی اور ٹاپک, بات کو گول کریں, کسی اور ٹاپک کو چیڑ دیں, کہاں یا اس کا کیا ہوا, فلاں ہو کیا کرا تھا آدمی, اس نے کیا کیا تھا, آج کل تو یا بڑی سردی ہے فلاں, ٹاپک کو چینج تاکہ وہ رخ موڑے اور ہم بچیں سننے سے. اور ہمت ہے تو صاف ہی کہتے ہیں تو بہت بڑا گناہ آپ کر رہے ہیں, مجھے ملوث کر رہے ہیں اس. اور تیسری حالت یہ ہے کہ فوراً اٹھ جائیں بس, لیکن ہم تینوں اس لیے نہیں کرتے کہ یا آدمی ناراض ہو جائے گا, اللہ کو ناراض کر رہے ہیں, وہ جہنم پہنچ رہے ہیں, میرے چاچا ناراض ہو جائے گا, میرا فلاں ناراض ہو جائے گا, میرا استاد صاحب ناراض ہو جائیں گے, فلاں صاحب ناراض ہوں گے, یہ کون کہتا ہے؟ اٹھ کے چلے, اللہ کا حکم ہے, بہت بڑا گناہ ہو رہا ہے, زنا ہو رہا ہے, سو سے بڑے بڑے گناہ ہو رہے ہیں. ایک ہمت کرنے والا بہت سے گناہوں جو میں نے وحید آپ کو بتائیں, اس میں مطلع ہے وہ بیٹھا دوں, اس کی تو بدبو اتنی ہے کہ کوئی بیٹھ نہیں سکتا اس کے پاس, بدبو بند ہے نا جسم کے اندر آنے دے. آپ منہ لحاظ کریں گے, آپ نے جی کیا کر سکتے ہیں, مجبوری ہے جی, آپ یہ کرتے ہیں فلاں کرتے ہیں, ٹھیک ہے آپ میں ہمت نہیں ہے, لڑائی نہیں کرنا چاہتے, آؤٹ, بس بیٹھنے چھوڑ دیں, سوسائٹی میں جانے چھوڑ دیں, الگ ہو جائیں کہ ہر وقت یہاں یہ کام ہوتا ہے میں وہاں کیا کروں جا کر. تو کرنے والا بھی اور سننے والا بھی سارے اس ملوث ہو جاتے ہیں اس گناہ. بیت کو کریں سوچیں, اللہ کی مدد مانگے انسان. اور تیسری چیز الحمدللہ جس طرح اللہ پاک نے مجھے چانس دیا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں, میں آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم ماشاء اللہ ذکر ہمارا فل ہو جاتا ہے, نمازیں ہماری پوری جا رہی ہیں, مجالس ہماری صحیح جا رہی ہیں, لیکن جب آتا ہے نا غیبت کا کھانا تو اس میں ہم فیل ہوئے. جو لوگ اللہ کے فضل و کرم سے اس کی رحمت سے یہ کام کر رہے ہیں الحمدللہ, لیکن جو کر رہے ہیں مجھے اللہ کی رحمت سے پورا امید ہے کہ وہ تو اللہ کی مدد آدم مان رہے ہیں, انشاءاللہ گناہوں سے نکل جائیں گے, بالکل بالکل. اور جو نہیں کر رہے وہ تو ہیں چور, تو تعلق نہیں چیز کا کہ ہمارے کا تعلق, تو ان کی اپنی ایک دنیا ہے, اکثر کرتے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کسی آفر کو ایکسیپٹ کیوں کریں, ان کو تو پتہ ہی نہیں آخر میں تو دنیا چاہیے, بس مال آ رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, فلاں ہو رہا ہے, ان کو کیا پتا غیبت کیا ہوتی ہے, جھوٹ کیا ہوتے ہیں, مسئلہ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں نہیں مسئلہ آتا ہے, یہ تو یہ نہیں کریں گے تو ہمارا کام کیسے چلے گا, فلاں نہیں ہو تو کیسے چلے گا, یہ پتہ نہیں کہ کس حال کے اندر وہ آدمی کھڑا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ایکسپوز کر دے کہ تو یہ ہے, مجھے بتائیں اس کا کیا ہے, وہ بدبو ظاہر کر دے اس کی جو غیبت کی بدبو اس کے اندر پھنسی ہوئی ہے, اندر اس کے جسم کے اندر, کوئی نہیں روکتا ان چیزوں سے, ہم ایک دوسرے کو روکتے ہیں. بھائی شیٹ کریں, بہت بڑا اللہ نے اس وقت اللہ نے ہمیں ایک سسٹم دیا ہے بڑا زبردست, خاص طور پہ یہ جو ہے نمازوں کے لیے نہیں ہے, بلکہ یہ سارے اینڈ جو ہم نے رکھے نا اصل گناہ تڑک کرنے والا اصل کام تو وہ ہے, جس نے کرم اٹھا لیا تو سمجھے اللہ تعالیٰ کہے گا کہ واقعی اس کی ہمت ہے, اب یہ چاہتا ہے کہ میں اس گناہ کو چھوڑنا چاہتا ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے چاہتا ہے, ورنہ یاد رکھیں اللہ کی سنت الہی ہے کہ جو اللہ کی رحمت کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے وہ بہت بری موت ہوتی ہے اس شخص کی, کوئی کام نہیں آئے گی عبادت میں آپ کو اتار اس گناہ کے ساتھ, کوئی کام نہیں آئے گی. یہ ذکر آپ کا آنا, یہ مسجد آنا, یہ فلاں ہونا, کچھ بھی نہیں ہوگا. جو اللہ کا قانون ہے وہ قانون ہے, وہ آپ بتا دیتا. تبھی اللہ نے ہمیں موقع دیا, کرو ہمت لگا, کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو, ایک دن انشاءاللہ اللہ پاک اس سے انسان کو نجات دے دیتا ہے. کر کے بغیر تو نہیں آتا. تو چوتھی چیز یہ ہے کہ شرک کو کرنا شروع کریں. مجھے کیا فائدہ آپ کرے, میں تو الحمدللہ تنگ نہیں ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے پر بوجھ ہے, اللہ مجھ سے اور جتنا چاہے کام لے. میرے جسم کے ایک ایک بوٹی سے اللہ تعالیٰ میں ٹکڑے بھی ہو جائیں تو میں دل کرتا ہے دین کا کوئی کام کروں. اس میں دو چیز ہیں, سب سے بڑی چیز تو میرے شیخ نے مجھے حکم دیا ہے, حکم دیا تھا اللہ کے شیخ نے, تیرے میرا تعلق جڑا ہے. میرے شیخ نے مجھے کام بتایا, ان کے حکم مانتا ہوں, اس چیز اللہ راضی ہوتا ہے. مجھے کوئی یہ نہیں کہ میں آپ پہ احسان کر رہا ہوں, کچھ کر رہا ہوں, تو خادم آپ حضرت. لیکن مجھے افسوس یہ ہے کہ جو اللہ کی اس رحمت کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے, جو بالکل سمن بکن امین بیٹھے ہیں, پتہ نہیں کیا ان کے آگے دروازے کھلے ہیں, جو شیطان نے اس کا بالکل بند کر دیا, چھوڑ کے دکھایا مجھے کوئی غیبت میں. گارنٹی میں تو ہمیشہ گارنٹی دیتا ہوں, بڑے سے بڑے آدمی کو گارنٹی دیتا ہوں, بڑے سے بڑے جتنے بھی ہیں کسی لائن میں آ جائیں, یہ 40 دن کا مجھے چندہ کر کے دکھا دیں شیٹ, مان جاؤں گا ہاں بھی آپ سے. شیطان نہیں کہہ رہا وہ تو یہ ہے, تو فلاں ہے, تو یہ ہے, کوئی کچھ نہیں بھائی. گناہ تو آدمی کو ککھ نہیں چھوڑتا. آپ یہ دیکھ لیں کہ بہت بڑا وزیر اعظم ہے, منسٹر ہے, صدر ہے, اور وہ چوری میں پکڑا جائے, اس کو کچھ رہتا ہے؟ کچھ رہتا ہے اس کے پاس؟ کچھ بھی نہیں. وہ تو عزت ہے اس کے پاس. کبھی تو کتنے بڑے محلات میں بیٹھتا تھا, کتنی گاڑیاں تھیں, ایک میں جیل میں چلا گیا, ایک میں چور ہے. یہ تو دنیا کا نقشہ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا تو کہے گا, میں تو یہ بھی تھا میرے پاس, تو وہ بھی تھا. اسی طرح انسان کی زندگی ہے. جب اللہ کا مجنب آپ ہوگے تو تیرے کس چیز کے تجھے بڑا اونچا کرے گا؟ تجھے تیرا قرآن اونچا کرے گا, تیری حدیثیں اونچی کریں گی, کس چیز سے تم اونچا ہو جائے گا؟ اللہ کا نافرمان ہو چکا ہے تو سب چیزیں تجھے ڈبو دی پانی کے اندر, نافرمانی کے اندر. تو اس کا علاج یہی ہے کہ آدمی کیا کرنا چاہیے, ہمت کرے فوراً. اللہ نے تو ایک راستہ دے دیا ہے سسٹم کا. پکی وہ شیطانی چکر کے اندر لوگ ہیں جو جن کے قدم ہی نہیں اٹھے, جو چاہتے ہی نہیں, سستی ہے جی, کیونکہ اہمیت ہی نہیں چیز کی. ان کو پتہ نہیں اپنے ہر کچھ وہ ڈبو رہے ہیں, ہر چیز کو ختم کر رہے ہیں. بہت بڑے عذاب کے اندر ہوتا ہے. ایک اللہ نے سہارا دیا ہے بہت بڑا, جس سے انسان بس سکتا. جو کوشچن کہ ہم تمہاں غیبت سے کیسے بچیں, آگے نہ چاہیے. سب سے پہلا کیا چیز ہے؟ ارادہ. جان چھڑاؤں اسی تو بہت بڑی چیز ہے. نمبر دو کیا ہے؟ اللہ سے مدد, وہ اللہ تعالیٰ میں چھوڑنا چاہتا ہوں. تیسری چیز کیا ہے؟ جو اس کی سزائیں ہیں اس کو ہر وقت یاد رکھے سامنے آدمی, کس کی یہ جو گناہ, اس کی تو سزا اتنی سخت نہ ہے, کیسے برداشت کر سکتا. اس کے بعد اگلا سٹیپ جو ہے, سبحان اللہ, تو اللہ نے دیا ہے کہ بھائی بہت زبردست سٹیپ دیا ہے. کیا ہے؟ اللہ قرآن میں اس کی تعریف کی, ذکر اللہ ہے, ذکر اللہ ہے. جو آدمی ذکر کرتے ہیں الحمدللہ, کسی سے نسبت رکھ لیتے ہیں, ان کے لیے نفس جو ہے بہت کمزور ہو جاتا ہے. شیطان کو اللہ بہت ہی کمزور کر دیتا ہے. ان کے لیے قدم بڑھائیں تو وہ ختم کر سکتے ہیں وہ چیزیں. میں نے دیکھے شیٹوں پہ پہلے دفعہ ان کی شیٹ آئی, جب کاٹے 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 کاٹے, دوسری دفعہ آئی تو اللہ کے وہ سب دیکھتا ہوں کہ 40 کے 40 دن ان کا کوئی کاٹا نہیں ہے, نکل گئے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ سسٹم ہے. بتایا کہ ذکر کو اختیار کیا نا, اللہ کے ذکر سے اپنے نفس کو مارا, اپنے قلب کو مضبوط کیا, اپنے روح کو مضبوط کیا, نہ کم ہونے لگے. کتنی بڑی, اللہ اکبر, کتنی بڑی گناہ کے ساتھ انسان بچ گیا. कि 40 दिन तक उसने किसी की गइबत नहीं की। उस औरत एक मामूली बात है, तो सबसे इफेक्टिव थिंग आ जाती है क्या, अल्लाह का। तो इस सिस्टम से चले इंशाल्लाह, मनहूस तरीन चीज है जो गइबत, इससे बच जाएंगे। इसी तरह दूसरे गुना भी हैं, उनसे भी जान छुटेगी। इस पे इक्तफा ना करें, यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ और खुद भी समझना चाहता हूँ कि अपने अमाल पे इक्तफा ना करें। वो हदीस बता दिए कि वहाँ अमाल जीरो हो जाएंगे सारे, सब क्वालिटीज जीरो नजर आएंगे, कुछ भी नहीं। तो मेहनत इस पे करें कि अल्लाह ताला हमसे गुनाहों से बचाए, अल्लाह पाक हमसे गुनाहों से बचाए।